120 विकास अंग्रेजी साहित्य में निबंध। यूरोप में निबंधों का श्री गणेश फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेन सन 1533 से 1592 से होता है। स्वयं उस पर प्लूटार्क ईस्वी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, विशेषता उसकी आचार संबंधी पुस्तक मोरेलिया और सिनेका 61 ईस्वी पूर्व और से 30 ईस्वी पूर्व का अभाव था। उसके निबंधों का संग्रह फ्रांस में सन 1580 में प्रकाशित हुआ। पृष्ठ 221 वे विविध विषयों पर थे, किंतु उनमें यही त्रुटि थी कि वे विचार श्रृंखला के सहारे चलते थे। बीच में यदि भय का उल्लेख आया तो भय पर ही उसकी विचारधारा चल पड़ी, और यदि सवारी का नाम आया तो सवारियों का की विवेचना होने लगी। उसके निबंधों में सामग्री प्रचुर और मूल्यवान है, पर नियंत्रण का अभाव है। मॉन्टेन के निबंधों का अंग्रेजी अनुवाद सन 1600 के लगभग हुआ। इंग्लैंड में बेकर के निबंध सन 1600 के से कुछ पूर्व निकले थे, किंतु विद्वानों का ख्याल है कि बेकर ने मॉन्टेन के निबंध फ्रांसीसी भाषा में पढ़े होंगे। बेकर के निबंध वास्तव में बड़े संबद्ध हैं और उनमें सूत्रों की सी समाज शैली का परिचय मिलता है। उसके वाक्य सूक्ति रूप से व्यवहित होते हैं, जैसे रेडिंग मेक्स ए फुल मैन, कन्फेंस ए रेडी मैन एंड रिटिंग एन एक्सेक्ट मैन, अर्थात पढ़ने से मनुष्य में पूर्णता आती है, वार्तालाप से वह प्रत्युत्पन्नमति बढ़ना बनता है और लिखने से उसमें निश्चितता आती है। बेकन के निबंधों में निर्व्यक्तिकरण अधिक है, उनमें प्रभाव उत्पादन का प्रयत्न अवश्य है, किंतु तार्किक विश्लेषण का अधिक सरसता में बाधक होता है। बेकन के विषय भी प्रायः अमूर्त और मनोवैज्ञानिक रहे। मॉन्टेन के निबंधों में उसके व्यक्तित्व की पूरी छाप थी। 17वीं शताब्दी में निबंधकारों में बेन जॉनसन, अब्राहम कौले, विलियम टम्पिल आदि प्रमुख हैं। इनके लेखों में व्यासोन्मुख शैली और निजीपन का कुछ आभास मिलता है। क्राउले के ऑफ माई सेल्फ नाम के निबंध में उसकी आत्मा का प्रतिस्पंदन सुनाई पड़ता है। निबंध में सजीवता लाने के लिए उसका झुकाव मूर्त विषयों की ओर हुआ। वर्ग प्रतिनिधियों जैसे कृषक, कवि, विश्वविद्यालय का विद्यार्थी और व्यक्तियों का चरित्रण होने लगा। विचार और विश्लेषण के साथ वर्णन की प्रवृत्ति बढ़ी। निबंध में निजीपन का विकास टेटलर सन 1709 और स्पेक्टेटर सन 1711 नाम के समाचार पत्र से हुआ। पीछे से आहडलर और रैम्बलर ने निबंध साहित्य के प्रसार में योग दिया। इनकी कलेवर पूर्ति के लिए निबंध साहित्य प्रचुरता से रचा जाने लगा। इन समाचार पत्र के निबंधों के संबंध में एडिसन और स्टिल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन लोगों ने निबंध के विषय को पर्याप्त विस्तार दिया और शैली में सरलता तथा वार्तालाप की सी सजीवता उत्पन्न की। इन लोग लेखकों ने सामाजिक विषयों को भी अपनाया, इस कारण वे जनता के अधिक निकट आ सके। डॉक्टर जॉनसन और गोल्ड स्मिथ भी 18वीं शताब्दी में हुए। डॉक्टर जॉनसन के लिए आकार सदृश प्रज्ञ की बात बिल्कुल चरितार्थ होती थी, जैसे वे भारी भरकम आकार के। पृष्ठ 222 थे, वैसे ही उनकी शैली भी भारी भरकम थी। उनकी शैली में गंभीर था, जो चटपटापन उनकी जीवनी में उल्लिखित वार्तालाप में दिखाई देता है, उसका उनके निबंधों में अभाव सा है। ओलिवर गोल्डस्मिथ सन 1728 से 1774 के निबंधों में एक सुखद हल्कापन है, उनमें उपदेशात्मक के अभाव के साथ कवि की प्रतिभा की झलक मिलती है, जो हास्य विनोद के पुट के साथ और भी चमक उठती है। गोल्डस्मिथ की शैली का पूर्ण विकास हमको चार्ल्स लैम सन 1775 से 1834 के निबंधों से मिलता है, जो कि वैयक्तिक निबंधों के उत्कृष्ट रूप कहे जा सकते हैं। उसमें कल्पना के साथ उत्साह और व्यक्ति महानता होने के कारण वे अधिक रुचिकर हो सके। वे अनियमित निबंध के चरम विकास कहे जा सकते हैं। 19वीं शताब्दी के निबंधकारों में मैकॉले, कार्लाइल, मैथ्यू अर्नॉल्ड, हेसलेट, रिस्किन, हेक्सले, मिल, हॉबर्ट, स्पेंसर, एमर्सन आदि प्रमुख हैं। इनकी अलग अलग शैलियां हैं, किंतु इनके निबंधों में विचारात्मकता का प्राधान्य है। आलोचनात्मक निबंध लेखकों में हेसलेट 1778 से 1830, मैकॉले 1800 से 1859, मैथ्यू अर्नॉल्ड 1822 से 1888, थैकरे 1811 से 1863 आदि प्रमुख हैं। जॉन रस्किन 1819 से 1900 के निबंधों में एक विशेष पांडित्यमयी नैतिकता और चमत्कार पूर्ण तारिकता के दर्शन होते हैं। राल्फ वाडो इमर्सन 1803 से 1850 में आध्यात्मिकता का अधिक पुट है। कार्लाइल 1795 से 1881 आलोचनात्मक है और उनके कुछ निबंधों में व्याख्यानदाताओं का सब भावावेश भी है। इनकी भाषा बड़ी ओजमयी है। साहित्यिकता और निजीपन का योग करने वाले लेखकों में रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन 1850 से 1894 का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह रोगग्रस्त रहता था, किंतु उसने केवल भौतिक जीवन की अपेक्षा जीवन का अनुभव प्राप्त करने को अधिक महत्व दिया है। वर्तमान युग के निबंधकारों में जी के चेस्टर्स्टन 1874 से 1937 तथा एच जी वेल्स 1866 से 1946 आदि प्रमुख है। अंग्रेजी भाषा में निबंध साहित्य पर्याप्त रूप से विकसित हो चुका है और प्रमुख लेखकों की भी नामावली उपस्थित करना कठिन कार्य हो जाएगा। वर्तमान कालीन निबंधों में जीवन से तथा प्रकृति से संपर्क बढ़ता जाता है। आजकल के निबंधकार लक्षणा व्यंजना के सहारे विवेचनशील दृष्टा की भांति जीवन की आलोचना करते हैं। उसमें उपदेशात्मकता का अभाव और सुखद निष्प्रयोजनता रहती है। साथ ही छिछला मनोरंजन भी उनका लक्ष्य नहीं है। गंभीर विषयों को एक मनोरम आकर्षण के साथ उपस्थापित करने में ही निबंध लेखक की चरम सफलता है। हिंदी साहित्य में निबंध। प्राचीन साहित्य में प्रबंध। यद्यपि संस्कृत और प्राकृत में निबंध शब्दों का प्रयोग चिरकाल से मिलता है, तथापि जिस अर्थ में आजकल इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है उस अर्थ में पृष्ठ 223 पहले कभी न था। संस्कृत में गद्य का अभाव तो न था, किंतु उसका प्रयोग या तो दार्शनिक भाष्यों में था या कादंबरी, दशकुमार चरित आदि कथा ग्रंथों में। केवल एक ही विषय अथवा विषय के किसी अंग विशेष या पक्ष को ही लेकर जो छोटे छोटे ग्रंथ रचे गए उनको हम निबंधों के पूर्वज कह सकते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य का श्रृंगार रसमंडन अथवा गंग कवि का चंद छंद वर्णन की महिमा इसी कोटि के ग्रंथ कहे जाएंगे। प्रबंध शब्द रामायण जैसे ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ है। स्वयं गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस को निबंध कहा है। भाषा निबंध मती मंजल मातानुति प्राचीन काल के इस शब्दों से संगठन क्रमबद्धता और तारतम्य का भाव अधिक था। निबंधों का विकास। नाटकों की भांति निबंधों का भी आविर्भाव हरिश्चंद्र युग में ही हुआ। अंग्रेजी साहित्य की भांति हिंदी में भी समाचार पत्रों जैसे हरिश्चंद्र चंद्रिका, ब्राह्मण, सार सुधानिधि आदि के उदय के साथ निबंधों का प्रचार हुआ। छोटे छोटे लेख या निबंध समाचार पत्रों के एक आवश्यक अंग हो जाते हैं। निबंध साहित्य के प्रारंभिक इतिहास में हम प्रायः पत्रकारों को ही अग्रगण्य पाते हैं, जैसे हिंदी प्रदीप के पंडित बालकृष्ण भट्ट, जन्म संवत 1901, कवि वचन सुधा और आनंद कादम्बिनी के पंडित बद्री नारायण चौधरी, जन्म संवत 1912, ब्राह्मण के पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जन्म संवत 1913, काला कांकर से निकलने वाले हिंदुस्तान के श्री बाल मुकुंद गुप्त, जन्म संवत 1912, सुदर्शन के पंडित माधव प्रसाद मिश्र, जन्म संवत 1927। सरस्वती के पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जन्म संवत 1917 संपादक थे। लेख या निबंध स्वतः पूर्ण रचना होते हुए भी इतनी बड़ी रचना नहीं होती कि एक या दो ही पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हो जाए। उनकी छोटी पुस्तिकाएं अवश्य बन सकती हैं। समाचार पत्र उनका स्फुट रूप से प्रकाशन कर लेखक को उनके पुस्तक रूप में संग्रहित होने की प्रतीक्षा से बचा देते हैं। मोटे तौर से हम निबंध साहित्य के इतिहास को तीन कालिया युगों में बांट सकते हैं। एक भारतेंदु युग, दो द्विवेदी युग और तीन आधुनिक युग या शुक्ल युग। इस संबंध में यह बोलना चाहिए कि इस प्रकार का विभाजन केवल सुविधा के लिए किया गया है, न तो सभी लेखक युग निर्माताओं से पीछे चलते हैं और न एक प्रवृत्ति किसी निश्चित काल तक ही चलती है। लेखक भी काल युग की सीमा से नहीं बनते हैं। बहुत से लेखकों ने द्विवेदी युग में अपने साहित्यिक जीवन का श्री गणेश किया है और आधावधि उनकी लेखनी समय की गति के साथ कदम मिलाए हुए चल रही है। पृष्ठ 224। भारतेंदु युग गद्य का प्रारंभिक काल था, इसलिए इस युग में गांधीर्य की अपेक्षा मनोरंजन और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक है, किंतु ये चमत्कार प्रदर्शन पूरी तड़क भड़क न थी, उसमें चटपटेपन के साथ पौष्टिकता भी थी। भारतेंदु युग के निबंध साहित्य के पीछे राजनीतिक और सामाजिक सुधार की भावना भी निहित थी। ये लोग नितांत उपयोगितावादी भी थे। इस काल के निबंधों में एक विशेष सजीवता और जिंदा दिली के दर्शन होते हैं। उन दिनों पद की भाषा का तो परिमार्जन हुआ ही, किंतु गद्य की भाषा को व्याकरण की कठोर श्रृंखलाओं में बांध रखने की अपेक्षा अपनी स्वच्छंद गति से बढ़ने देने की ओर अधिक प्रवृत्ति रही। यह गद्य का शैशव काल अथवा लालन काल था। शिक्षण काल द्विवेदी युग में आया। भारतेंदु युग में निबंध साहित्य का उदय किसी बाहरी प्रेरणा से नहीं हुआ, वरन उनका जन्म परिस्थिति की आवश्यकताओं में हृदय की उमंग से हुआ। उस युग का निबंध साहित्य वाणी का विलास था अवश्य, किंतु उसका संबंध तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों से था। उसमें निर्वैयक्तिकता न थी। कहीं कहीं तो उनकी स्वच्छंदता और वैयक्तिकता दोष की सीमा तक पहुंच गई थी। वैयक्तिकता का अर्थ केवल इतना ही है कि उसमें लेखक के व्यक्तित्व की छाप पर भरपूर थी, किंतु वे व्यक्ति संबंधी न थे। निबंध साहित्य के प्रारंभिक युग के लेखकों ने स्वयं भारतेंदु जी के अतिरिक्त पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, लाला श्रीनिवास दास, पंडित केशव राम भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी और बाबूबाल मुकुंद गुप्त हैं। इन लेखकों की वैसी तो अपनी अपनी विशेषताएं हैं, किंतु जिंदा दिली, समाज सुधार और देशभक्ति उस युग के व्यापक गुण थे। राजनीति और समाज सुधार की कटु से कटु बातें हास्य व्यंग के सहारे अपेक्षाकृत कम आपत्तिजनक बन जाती है। उस काल के लेखकों ने इस साधनों का बड़ी सफलता के साथ प्रयोग किया था। इसमें श्लेष कहावतों, मुहावरों आदि की भरमार रहती थी। इनमें एक विशेष प्रकार का फक्कड़पन रहता था, जो कभी कभी उद्दंडता का तटस्पर्शी बन जाता था। उस काल में कुछ गंभीर लेख भी लिखे गए थे। द्विवेदी युग। यह युग भाषा के परिमार्जन का था। हरिश्चंद्र युग में वृद्धि और फैलाव था। द्विवेदी युग में साहित्योद्यान की साज संभाल आई। लालन के पश्चात शिक्षा और ताड़न का समय आया। भाषा के शुद्ध और व्याकरण सम्मत होने पर द्विवेदी जी ने अधिक जोर दिया। उनके समय में निबंध का विषय समाज, राजनीति तथा चटपटेपन में सीमित न रहा। द्विवेदी जी के समय में उपयोगिता के साथ ज्ञान विस्तार की ओर भी प्रवृत्ति आई। पृष्ठ 225। और उनकी प्रेरणा से एक ऐतिहासिक पुरातत्व संबंधी एवं आलोचनात्मक लेख लिखे गए। दूसरी भाषाओं से गंभीर विषयों के निबंधों का अंग्रेजी में बेकन के बेकन विचार रत्नावली नाम से आचार्य द्विवेदी जी द्वारा तथा मराठी से चिपलूड़कर के निबंध माला दर्श में संग्रहित निबंधों का पंडित गंगा प्रसाद अग्निहोत्री द्वारा अनुवाद हुआ। उससे साहित्य की श्री वृद्धि हुई और कुछ विचारशीलता जागृत हुई, किंतु वह कबीर के शब्दों में झूठी पत्तल चाटने की ही बात रही। द्विवेदी जी संवत 1927 से 1995 के वात्सल्यमय प्रोत्साहन के कारण बहुत से नए लेखक भी प्रकाश में आए और कुछ लोगों ने नवजागरण की चहल पहल में स्वयं ही लिखना शुरू कर दिया। स्वयं द्विवेदी के अतिरिक्त उस समय के लेखकों में पंडित गोविंद नारायण मिश्र, पंडित माधव प्रसाद मिश्र, पंडित चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी बाबू, गोपाल राम कहमरी बाबू, ब्रज नंदन सहाय, पंडित पदम सिंह शर्मा, अध्यापक पूर्ण सिंह प्रभृति प्रमुख हैं। यद्यपि बाबू श्याम सुंदर दास जी तथा पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी द्विवेदी जी के समय में लिखना प्रारंभ किया था, तथापि वे उनके ऋणी न थे और स्वयं ही प्रभाव के केंद्र थे। गंभीर विषयों को सरल बनाने में बाबूजी बड़े सिद्धस्थ थे। उनके विषय प्रायः साहित्यिक व सांस्कृतिक रहे। बाबूजी अपने पाठकों के मानसिक धरातल पर प्रायः धरातल पर तक नीचे उतरने का प्रयत्न करते थे, किंतु इतना नीचे नहीं उतरते थे कि उसकी शालीनता और गौरव गरिमा नष्ट हो जाए। मिश्र बंधुओं ने भी उसी काल में लिखा, किंतु वे भी द्विवेदी जी के ऋणी न थे। उनके निबंधों में शिक्षक का अहम अनुचित रूप में तो नहीं था, किंतु वह सहज में परिलक्षित हो जाता है। इन पंक्तियों के लेखक में ने भी निबंध लेखन द्विवेदी युग में ही प्रारंभ किया था, किंतु वह द्विवेदी जी का कृपा पात्र न बन सका। इस युग के लेखकों में विचारात्मकता का प्राधान्य रहा, किंतु वह विचारात्मकता सूक्ष्मता और गहराई न प्राप्त कर सकी। इस समय के लेखकों में से कुछ जैसे माधव प्रसाद मिश्र, ब्रजनंदन सहाय, पद्म सिंह शर्मा, अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी आदि में भावात्मकता का पर्याप्त पुट रहता था, किंतु वह भावात्मकता किसी गंभीर विचारधारा को लेकर ही चलती थी। आधुनिक युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल संवत 1941 से 1997 के निबंध क्षेत्र में पदार्पण करने से निबंध साहित्य में एक नया जीवन आया। द्विवेदी युग में विषय विस्तार और परिमार्जन तो पर्याप्त हुआ, किंतु उस काल में उतने विश्लेषण बुद्धि से काम लेने और गहराई में जाने की प्रवृत्ति न उत्पन्न हो सकी। आचार्य शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंध बेकन निबंधों से टक्कर ले सकते हैं और साथ ही उनमें हास्य व्यंग की भी झलक दिखाई देती है, जो उन्हें लोहे के चने बनने से बचाए रखती है। आचार्य शुक्ल जी के गंभीर निबंध चिंतामणि में संग्रहित हैं। उनमें दो प्रकार पृष्ठ 226 के निबंध हैं। एक तो भावों के विश्लेषण से संबंध रखने वाले निबंध, जो भाव विषयक होते हुए भी भावात्मक नहीं है वरन उच्च कोटि के विचारात्मक हैं। दूसरे साहित्यिक जिनमें कुछ सैद्धांतिक आलोचना रखते हैं जैसे साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, और कुछ व्यवहारिक आलोचना के हैं जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र। आचार्य शुक्ल जी के मनोविज्ञान निबंधों की भी अनवीति उनकी आलोचनाओं से की जा सकती है। वे भारतीय रस सिद्धांत पर अवलंबित हैं और उनका संबंध जीवन सागर के निजी अवगाहन से है। इन निबंधों में भावों का विश्लेषण पर्याप्त मात्रा में हुआ है, किंतु जीवन से चुने हुए उपयुक्त उदाहरणों के कारण वह विश्लेषण जरूर नहीं होने पाया है। लज्जा और ग्लानि का आधार भारत की आत्मग्लानि है। लोभ और प्रीति का अंतर समझ लेने पर जायसी के रत्नसेन के प्रेम की आलोचना भली प्रकार समझी जा सकती है। भारतेंदु और द्विवेदी युग में भी क्षमा, आत्मनिर्भरता आदि विषयों पर विवेचन हुआ है, किंतु वह शुक्ल जी का सा विश्लेषणात्मक न था वरन प्रशंसात्मक और नैतिक अधिक था। इन निबंधों की पद्धति में मनोविज्ञान का आत्मविश्लेषण आजकल का मनोविश्लेषण नहीं चाहे हो, किंतु उनका लक्ष्य साहित्यिक है। इन निबंधों के बहुत से वाक्य सूक्ति होने की क्षमता रखते हैं, जैसे वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति है, लोभ सामान्य मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख। शुक्ल जी के निबंधों में विषय की प्रधानता है या व्यक्ति की, इसका निर्णय उन्होंने पाठकों पर छोड़ा है। उन निबंधों में शैली का ही व्यक्तित्व है, विषय की ओर उनका पूरा ध्यान रहा है, किंतु उसमें मनोविज्ञान या साहित्य शास्त्र की पुस्तक का सा निर्व्यक्तिकरण नहीं है। विषय पर शैली के व्यक्तित्व की छाप होने के कारण उनके लेख निबंध की कोटि में आते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें जो समस्याएं उठाई गई हैं, वे मौलिक होने के कारण निजी हो गई हैं। इन पंक्तियों के लेखक ने भी हिंदी निबंध साहित्य की भंडार पूर्ति में कुछ अंश दान किया है। उसके मनोवैज्ञानिक निबंधों का संग्रह मन की बातें शीर्षक निबंध संग्रह में है और अन्य निबंध मेरे निबंध और कुछ उतले कुछ गहरे नाम से के संग्रहों में संग्रहित हैं। अन्य लेखक आधुनिक युग के अन्य लेखकों में सरश्री डॉक्टर पीताम्बर दत्त भड़तवाल, माखनलाल चतुर्वेदी, नलिनी मोहन सन्याल, इलाचंद्र जोशी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंदलारे वाजपेयी, बनारसी दास चतुर्वेदी, शांति त्रिवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, सदगुरु शरण अवस्थी, जैनेन्द्र नगेंद्र सत्येंद्र, कन्हैया लाल सहल, प्रभाकर माचवे, महाराज कुमार, डॉक्टर रघुवीर सिंह, श्री विनय मोहन, पृष्ठ 227 शर्मा आदि उल्लेखनीय है। इन महानुभावों के निबंध अधिकांश में आलोचनात्मक तथा साहित्यिक हैं। इनमें शैली का ही व्यक्तित्व है। निबंधों में व्यक्तिकता की दृष्टि से सियाराम शरण गुप्त तथा सुश्री महादेवी वर्मा के निबंध बहुत ऊंचा स्थान पाते हैं। साहित्य और समालोचना के अतिरिक्त आजकल के लेखकों ने विशेषकर पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा वासुदेव शरण जी अग्रवाल ने साहित्य सांस्कृतिक विषय भी लिए हैं। महाराज कुमार रघुवीर सिंह ने ऐतिहासिक विषयों को कुछ भावावेश के साथ अपनाया है। जैनेन्द्र की दृष्टि दार्शनिकता के साथ समाज की ओर गई है। श्री सदगुरु शरण अवस्थी ने इक्का नहीं आदि चटपटे विषयों पर भी लिखा है और ये निबंध भारतेंदु युग के लेखकों के समकक्ष रखे जा सकते हैं। हास्य व्यंग्य प्रधान निबंधों का भी अभाव नहीं है। सर्वश्री अन्नपूर्णानंद जी, निर्मल जी, बेढ़व बनारसी जी, निराला जी, श्री शिव पूजन सहाय, गोपाल प्रसाद व्यास, बरसाने लाल चतुर्वेदी आदि महानुभावों ने कहीं कहीं शुद्ध निबंध रूप में और कहीं कहीं कुछ कथानक का आधार लेकर हास्य प्रधान साहित्य उपस्थित किया है। श्री शिव पूजन सहाय जी के दो घड़ी शीर्षक संग्रह के निबंध विशेष रूप से साहित्यिक हास्य उपस्थित करते हैं। पंडित हरिशंकर शर्मा ने भी अपने चिड़ियाघर एवं पिजरा पोल में हास्य व्यंग्यात्मक लेख लिखे हैं। उनकी शैली में अनुप्रासों की छटा दर्शनीय है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हिंदी का निबंध साहित्य अन्य अंगों की भांति समृद्ध होता जा रहा है। हमारे लेखकों की रुचि सामाजिक और राजनीतिक विषयों की अपेक्षा आलोचनात्मक निबंधों की ओर अधिक है और इस विषय में वे कुछ गहराई तक भी पहुँचे हैं। इस गहराई के लिए हम गर्व कर सकते हैं, किंतु निबंध साहित्य की संपन्नता के लिए हमारे लेखकों को सामाजिक राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक विषयों की ओर भी प्रतिभा को गतिशील करने की आवश्यकता है। सामाजिक वैज्ञानिक और राजनीतिक विषय पर लिखा अवश्य जाता है, किंतु उसमें साहित्यिकता की अपेक्षा विषय प्रतिपादन की प्रवृत्ति अधिक है। केवल साहित्यिक विषयक लेख ही साहित्यिक नहीं होते, वरन साहित्यिक ढंग से लिखे हुए वैज्ञानिक लेख भी साहित्यिक हो जाते हैं। जीवन और आत्मकथा जीवन और साहित्य की अन्य विधाएं। मनुष्य का सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र मनुष्य है। पोप ने ठीक ही लिखा है कि मनुष्य के अध्ययन का उचित विषय मनुष्य है। सारा साहित्य ही मनुष्य का अध्ययन है, किंतु जीवनी और आत्मकथाओं में वह अध्ययन सत्य और वास्तविकता की कुछ अधिक गहरी छाप लेकर आता है। उपन्यास भी जीवनियों के रूप में लिखे गए हैं, जैसे अंग्रेजी में डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड और हिंदी में अज्ञेय जी की लिखी हुई शेखर एक जीवनी पृष्ठ 228 अथवा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित बाणभट्ट की आत्मकथा। उनमें उपन्यासकार को आत्मकथा का कहीं शीर्ण और कहीं स्पष्ट आभास भी रहता है, फिर भी उपन्यास उपन्यास ही है। उसमें रचनाकार कल्पना का कुछ अधिक पुट रहता है। जीवनीकार भी कल्पना का प्रयोग करता है, किंतु वह सामग्री के संयोजन और प्रकाशन की विधि में उससे काम लेता है और फिर भी उसकी कल्पना वास्तविकता से सीमित रहती है। वह कल्पना के अलंकारों से अपने चरित्र नायक की इतनी ही साज संभाल कर सकता है जितनी में कि उसका आकार प्रकार न बदलने पाए। वह उस माँ की भांति है जो अपने बालक को नहला धुलाकर बाल संभाल कर तथा धुले कपड़े पहनाकर समाज में भेजती है। कपड़ों के चुनाव में वह अपनी रुचि और कल्पना से काम लेती है, किंतु वह आकृति की असलियत को बदलने वाले पाउडर पेंट का या प्राचीन भाषा में कहे तो अंगराग का कम प्रयोग करती है। जीवनीकार आत्मकथा लेखक नहीं, उपन्यासकार की भांति सर्वज्ञता का भी दावा नहीं करता है। वह दृष्टा के रूप में रहता है। वह अपने चरित्र नायक के बहुत से रहस्यों को जानता है, किंतु फिर भी वह उसके मन की सब बातों को पूरी दृढ़ता के साथ नहीं कह सकता है। अज्ञात विषयों के संबंध में वह अनुमान ही से काम लेता है। उपन्यास और इतिहास के भेद, जीवनीकार न तो उपन्यासकार ही है और न इतिहासकार ही। इतिहास में सत्य का आग्रह अवश्य रहता है, किंतु उसमें व्यक्ति देश का अंग होकर आता है, अंगी देश ही रहता है। जीवनी में मुख्यतः व्यक्ति को ही मिलती है, उसके सहारे देश अथवा किसी संस्था का इतिहास भले ही आ जाए। बहुत सी आत्मकथाओं में हमको इतिहास के सूत्रों का अध्ययन मिल जाता है, जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की आत्मकथा से नागरी प्रचारणी सभा का इतिहास संबद्ध है, अथवा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय तथा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनियों में राजनीतिक इतिहास का हम अध्ययन कर सकते हैं। जीवनीकार अपने चरित्र नायक के विषय में अन्वेषण और अनुसंधान इतिहासज्ञ का सही करता है, किंतु जो बातें इतिहासज्ञ के लिए अनावश्यक होती हैं, जीवनीकार के लिए आवश्यक हो जाती हैं। इसमें वह उपन्यासकार का साथी है। उपन्यासकार व्यक्ति की ही परवाह करता है। छोटी छोटी बातें जैसे हंसी मजाक, जादू टोने, भूत प्रेत में विश्वास, जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी अथवा CI चिंतामणि को था। कपड़ों की लापरवाही या अधिक परवाह, सिगरेट या बीड़ी में किसको अधिक पसंद करना, भांग या अन्य नशीली वस्तुओं के प्रति मोह जैसा आचार्य शुक्ल जी को भांग के प्रति था, कंधों का हिलाना जैसा कभी श्रद्धेय टंडन जी करते हैं, पलकों का जल्दी जल्दी मारना, सिर खुजलाना, तेज चलना या धीरे धीरे चलना, अथवा ग्लैडस्टीन की भांति खम्भों को छूते हुए चलना, चलने में आनंद लेना आदि, ये सब बातें व्यक्तित्व के उद्घाटन में जीवनीकार के लिए अखबारों की प्रशंसा। प्रश्न 229। यूनिवर्सिटी के पदक पुरस्कारों तथा राजनीतिक विजय पराजयों की बराबर ही महत्व रखती है। रवि बाबू का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण घटना थी, किंतु उनके असली व्यक्तित्व की झलक उनके पास उस रुपए को शांति निकेतन के लिए उत्सर्ग करने में मिलती है। इसी प्रकार रवि बाबू ने अपनी आत्मकथा में अपने बचपन का वर्णन करते समय अपने कुर्ते में जेबी लगवाने की महत्वाकांक्षा का जो उल्लेख किया है, वह अब भी बाल मनोवृत्ति का परिचायक होने का अपना विशेष महत्व रखता है। जीवनी के साहित्य गुण, जीवनी घटनाओं का अंकन नहीं वरन चित्रण है, वह साहित्य की विधा है और उसमें साहित्य और काव्य के सभी गुण है। वह एक मनुष्य के अंतर और बाह्य स्वरूप का अर्थात आत्मा या पर्सनैलिटी का कलात्मक निरूपण है। जिस प्रकार चित्रकार अपने विषय का एक ऐसा पक्ष पहचान लेता है जो उसमें विभिन्न पक्षों में ओतप्रोत रहता है और जिसमें नायक की सभी कलाएं और छटाएं समन्वित हो जाती हैं, उसी प्रकार जीवनीकार अपने नायक के आपे की कुंजी समझकर उसके आलोक में सभी घटनाओं का चित्रण करता है। इस संबंध में श्री रामनाथ सुमन लिखते हैं, जीवनी की घटनाओं के विवरण का नाम जीवनी नहीं है। लेखक यहाँ नायक के जीवनी में छिपे उसके विकास को, उसके व्यक्तित्व के रहस्य को, उसकी मुख्य जीवन धारा को खोलकर पाठकों के सामने रख देता है। वहाँ जीवनी लेखक कला सार्थक होती है। ऊपर से मनुष्य के दिखाई पड़ने वाले रूप को दिखाकर ही जीवनी लेखन कला संतुष्ट नहीं होती, वह उस आवरण को भेदकर अंतर स्वरूप और आंतरिक सत्य को प्रत्यक्ष करती है। हमारे नेता की दो बातों से जीवनी की कृति में उसके चरित्र नायक का आपा या उसकी स्वरूपता उभर आती है। वह न भलाइयों को राजदरबार के कविंद्रों की भांति राई को सुमेरु करके दिखाता है और न बुराइयों को चवाई लोगों की भांति तिल का ताड़ रूप देता है। वह अनुपात का सदा ध्यान रखता है। जीवनीकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रमा में कलंक है अवश्य, किंतु वे साधारण है। सहानुभूति अंधभक्ति से भिन्न है। अंधभक्ति दोषों को भी गुण समझती है, सहानुभूति दोष को दोष ही समझती है, किंतु उसके कारण दोषी की हंसी नहीं उड़ाई जाती। जीवनीकार छोटे मोटे दोषों की एको ही दोषो गुण सन्नी पाते निमज्जती दोह किरणे विश्वांक, अर्थात गुणों के समूह या बाहुल्य में सन्निपात रोग है, किंतु इसका शाब्दिक अर्थ है अच्छी तरह इकट्ठा होना। एक दोष इसी प्रकार छिप जाता है जैसे चंद्रमा की किरणों में उसका कलंक। कलंक तो सूर्य में भी होता है, किंतु अधिक तेज धारियों के दोषों की लोग कम चर्चा करते हैं। साधारण जनता प्रश्न 230। गुणों की अपेक्षा दोषों को महाराज पृथु की भांति सहस्र कर्ण होकर सुनने को तैयार रहती है और उसका गुणों की अपेक्षा दोषों की सत्यता में भी अधिक विश्वास रहता है, किंतु लेखक को जनता की इस कमजोरी से लाभ उठाना उचित नहीं है। इसी के साथ बुराइयों को दबाना या छिपाना भी असत्य को आश्रय देना होता है। मनुष्य की कमजोरियां उसका गौरव नहीं तो उसके व्यक्तित्व की परिचायिका है और वे चरित्र की यथार्थता को बनाए रखती है। कहा जाता है कि राजकवि टेनिसन को विक्टोरिया की जुबली के अवसर पर दिन भर सिगरेट पीने को नहीं मिला तो उसको कहीं छिपाकर पीना पड़ा। ऐसी बातें मनुष्य को देवता होने की भ्रांति से बचाए रखती है। दोषों के वर्णन से सहृदयता का पल्ला न छोड़ना चाहिए। इस दृष्टि से पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी की लिखी हुई कविवर सत्यनारायण जी की जीवनी है। यद्यपि जीवनीकार मूर्ति रक्षक की भांति अनुपात पूर्ण सुसंगठित और चमकदार जीवनी नहीं दे सकता है, क्योंकि उसे सत्य का आग्रह रहता है और एक सजीव और संकुल चरित्र के उद्घाटन में अनविधि के साथ विरोधी और व्याघात भी रहते हैं, जिसके बिना जीवनी शायद निर्जीव हो जाए। तथापि उसे अपनी कृति को व्यूरे के वैविध्य को खोए बिना ऐसा सुसंगठित रूप देना चाहिए कि उसमें थोड़े में बहुत प्रसादकता आ जाए। इसके लिए स्ट्रेटजी का बताया हुआ पहला गुण सदा ध्यान में रखना चाहिए कि कोई अनावश्यक बात न आने पाए और न कोई आवश्यक बात छोड़ी जाए। स्ट्रेटजी का बताया हुआ दूसरा गुण यह है कि लेखक को अपनी स्वतंत्रता न खो देनी चाहिए। इस गुण के अभावात्मक रूप में हम अवगत हो चुके हैं कि लेखक को चरित्र नायक का अंधभक्त होना वांछनीय नहीं है, किंतु अपनी स्वतंत्रता रखने के ये अर्थ भी नहीं है कि जीवनी लेखक छिद्रान्वेषण को ही अपना ध्येय बना ले। लेखक को सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी अपेक्षा चरित्र नायक का अधिक महत्व है। कभी कभी जीवनी लेखकों का जीवन चरित्र नायक ने के जीवन से इतना संबद्ध हो जाता है जैसे स्वामी रामतीर्थ की अध्यापक पूर्णसी द्वारा लिखी हुई जीवनी में कि चरित्र नायक की जीवनी के साथ लेखकों की भी जीवनी आ जाती है, किंतु उसमें भी लेखक को अपनी गौरता न भूलनी चाहिए। इन सब मस्तिष्क और हृदय संबंधी बौद्धिक नैतिक और रागात्मक गुणों के साथ शैली का महत्व ध्यान में रखना आवश्यक है। शैली साधारण चरित्र नायक की जीवनी को भी आकर्षक बना देती है। जीवनी के लिए या तो चरित्र नायक इतना महान हो कि श्री रामचंद्र जी की भांति उसका चरित्र ही काव्य हो और किसी का कवि बन जाना गुप्त जी के शब्दों में सहज संभाव्य हो, या लेखक महान हो जिसके पृष्ठ 231 पारस स्पर्श और कमल के जादू से लोहा भी सोना हो जाए। डॉक्टर सूर्यकांत जी शास्त्री ने पहले प्रकार के उदाहरण में बॉसवेल की लिखी हुई जॉनसन की जीवनी बताई है और दूसरे प्रकार में जॉनसन द्वारा लिखी हुई सेवेज की जीवनी की ओर संकेत किया है। पहले का चरित्र नायक महान था और दूसरे का लेखक महान था। जहाँ पर चरित्र नायक और लेखक दोनों ही महान हो, वहाँ तो सोने में सुगंध की बात हो जाएगी। यह बात तो टैगोर, गांधी और जवाहरलाल नेहरू के आत्मचरित्र में ही पाई जाती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जीवनी लेखक अपने चरित्र नायक के अंतर्बाह्य स्वरूप का चित्रण कलात्मक ढंग से करता है। इस चित्रण में वह अनुपात और शालीनता का पूर्ण ध्यान रखता हुआ सहृदयता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ अपने चरित्र नायक के गुण दोष में सजीव व्यक्तित्व का एक आकर्षक शैली में उद्घाटन करता है। जीवनियों के प्रकार। जीवन चरित्रों की कई विधाएं और रूप हैं। लेखक की दृष्टि से तो जीवन और आत्मकथा ये दोनों प्राधान्य रूप हैं। जीवनी कोई दूसरा आदमी लिखता है और आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी की मालवी जी के साथ 30 दिन इन दोनों के बीच की चीज है। सामग्री सीधी मालवी जी से ली गई है और उसको लिखा है दैनिकी के रूप में पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने। उसमें 30 दिन की घटना नहीं है, वरन 30 दिन में कहा हुआ जीवन वृत्त है। महामना मालवीय जी की जीवनियों में पंडित सीताराम चतुर्वेदी की लिखी हुई जीवनी सबसे पूर्ण और कलात्मक है। उसमें लेखक की भक्ति भावना जरूर झलकती है, किंतु औचित्य से बाहर नहीं हुई है। जीवनी लेखक एक तो निरपेक्ष रूप से लिख सकता है, जिसमें कि अच्छा और बुरा सब कुछ आ जाए और पाठक अपनी अपनी भावना के अनुकूल सामग्री का संकलन कर ले। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन जैसी, अथवा लेखक अपने एक निश्चित दृष्टिकोण से लिख सकता है और उसी के अनुकूल वह सामग्री को संजोवेगा। पहले प्रकार की जीवनियों में बॉसवेल की लिखी हुई डॉक्टर जॉनसन की जीवनी है और दूसरे प्रकार की जीवनियां बहुत सी हैं। महात्मा गांधी, रवि ठाकुर आदि महापुरुषों की जीवनियां भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों में से लिखी गई हैं। ऐसे थोड़े ही लेखक होते हैं जो बॉसवेल की भांति अपने व्यक्तित्व को बिल्कुल भुला देते हैं।